प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू तृप्त हुई जो आत्मा कुछ कह न पा रही है, गहरे प्यार के सागर में डूबी जा रही है। हो तृप्त हुई जो आत्मा कुछ कह न पा रही है, गहरे प्यार के सागर में डूबी जा रही है, डूबी जा रही है। रत्नों की थालियाओ भर भर के बरसाए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए, आंखें मोती छलकाए।
ओम शांति। हमें जो टॉपिक मिला है प्रेम के आंसू, सबसे पहले अपन प्रेम पर चर्चा करेंगे, बाद में आंसू। तो प्रेम के बारे में ऐसे कहा जाता है कि वो ढाई अक्षर का शब्द है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि वो पत्थर को भी इंसान बना देता है, अर्थात पत्थर बुद्धि को यानी दिव्य बुद्धि बना देता है। क्योंकि किसी जानवर पर भी अपन प्रेम करें तो वो भी क्या इंसान जैसा बन जाता है। जैसे दुनिया में देखा जाए तो शेर है, शेर को भी बचपन से कई लोग पालते, देश विदेश में देखा होगा आपने, तो उससे इतना प्रेम देती है कि वो इंसान जैसा ही संस्कार बन जाते हैं उसके। वो इंसान के साथ खेलता है, घूमता है, खाता है, सोता है। तो ये प्रेम में इतनी शक्ति है। दूसरी बात, प्रेम संसार चक्र और सृष्टि चक्र की धुरी है, क्योंकि हम आत्माएं सतयुग में दिव्य गुणधारी देवता रहते, उस पर प्रेम स्वरूप देवता रहते हैं। तो सतयुग में ही ऐसा गायन है सतयुग का कि शेर और गाय घाट पर पानी पीते हैं और वहां पर घी दूध की नदियां बहती है। ये सब प्रेम की कमाल है। यदि देखा जाए तो इंसान को प्रेम नहीं मिले तो दो इंसान एक घर में पानी भी नहीं पी सकते इकट्ठा रह के। तो ये प्रेम की शक्ति है। तो प्रेम में इतनी ताकत है कि यदि प्रेम अपने अंदर रहे तो प्रेम के साथ साथ क्या होता है यानी संतुष्टता भी आ जाती है, सहनशीलता भी आ जाती है, नम्रता भी आ जाती है, गंभीरता भी आ जाती है, यानी सारे गुण प्रेम के पीछे पीछे आ जाते हैं। यदि आत्मा से प्रेम शब्द निकाल दिया जाए तो आत्मा क्या खंडित हो जाती है, यानी इतनी प्रेम में शक्ति है। तो जी हाँ, तो प्रेम इतना शक्तिशाली है, तो प्रेम से ये संसार सुखमय बन जाएगा और हम मनुष्य आत्मे भी उस दुनिया में जाने के योग्य रहेंगे। तो ये प्रेम, अभी हम आंसू पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हमें आंसू किसके समय आती है, किसके समय आते आंसू? हाँ, ज्यादा खुशी होती उस समय आंसू आती है, और हाँ लैटर लगते हैं ना, खुशी में आ गया, वो लैटर लगे तो बहुत खुशी हो जाती है उस समय आंसू, और यानी दुख के समय, जब दुख आता है उस समय भी आंसू आते हैं। और धोखा, कभी प्यार में धोखा हो जाता है तो भी, यानी इंसान से धोखा होता है, भगवान से तो धोखा नहीं होगा, तब भी दुख हो जाते हैं, आंसू आ जाती है। तो अभी हम ऐसे 5 पॉइंट निकाले कि बहुत सारे है, मगर उसमें ऐसे कब कब अपन इंसान को यानी आंसू आती है। एक तो दुख के समय आंसू आते हैं, क्योंकि मनुष्य के सामने ऐसी कभी ऐसी परिस्थिति बिकट आती है कि उस समय उसको कोई मदद भी करने के लिए तैयार नहीं होता, या कोई प्रियजनों की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भी क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाती है। जैसे किसी को धोखा, इंसान से धोखा मिल जाता है तो भी आंसू आ जाते हैं, और दुख के साथ कभी कभी सुख में भी आंसू आ जाते हैं। जैसे बहुत अपने कोई ऐसा दुख आ गया और उस समय किसी इंसान द्वारे या कोई भक्त को भगवान द्वारे ऐसी कोई मदद मिल जाती है, तो उस समय क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाते कि ऐसी विकट परिस्थिति में हमें मदद की, जिस इंसान ने मदद की उसका एहसान वो कभी भूलते नहीं, और वह उसके कारण वो आंसू आ जाती है। और तीसरी बात, कभी कोई भगवान की बहुत समय से प्रतीक्षा करते हैं, और बहुत प्रतीक्षा के बाद भक्तों के यदि भगवान दर्शन देता है या कोई उसका मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो उस समय भी भावनावश होकर भक्त को क्या होता है, आंसू आ जाती है। इस पर एक रामायण में सभी को पता है प्रसंग, जैसा शबरी का बताते हैं, तो थोड़ी हम उस पर मैं बताऊंगा कि शबरी है ये, उसका संकल्प रहता है कि प्रभु रामचंद्र मेरी कुटिया में आएंगे और मेरी कुटिया पावन करेंगी, तो मेरे कुटिया में वो प्रभु रामचंद्र आनी चाहिए, ऐसा उसका संकल्प रहता है। उस समय तो प्रभु रामचंद्र का जन्म नहीं होता है, लेकिन वो संकल्प रखती है, और उसके लिए क्या करती है, हर दिन जंगल में जाती है, कुछ फूल लेके आती है और फल लेके आती है, क्या प्रभु रामचंद्र आएंगे तो उसको फल खिलाऊंगी, और वो आने के बाद अपनी कुटिया को फूलों से सजाती है, और ऐसे कई दिन यानी सालों तक वो करती रहती है। और एक दिन ऐसा होता है कि प्रभु रामचंद्र अचानक उसकी कुटिया में आते हैं, यानी देखो संकल्प भी कितनी ताकत होती है। तो जब आते, आने के पहले दिन वो आते हैं, तो उसके पहले क्या करते हैं, जैसे उनकी दिनचर्या रहती है उसी दिनचर्या अनुसार वो जंगल में जाती है, फल लेके आती है, फूल लेके आते हैं। उस समय उसको बेर के फल मिलते हैं, तो बेर के फल कैसे रहते हैं, कोई खट्टे कई मीठे रहते हैं, एक एक फल को वो चखती है, और चख करके जो मीठा है वो प्रभु रामचंद्र के लिए रखती है, जो खट्टा है वो फेंक देती है, और उस दिन फूलों से अपनी कुटिया सजा लेती है वो। और जब अचानक वो देखती है कि उसके प्रभु रामचंद्र उसे कुटिया में आए, तो देखो उस समय क्या हालत होती होंगी उसकी, इतने यानी सालों से वो उनकी प्रतीक्षा करती है, और उस समय वो प्रत्यक्ष होती है तो एकदम उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो इस प्रकार हम भी द्वापर युग से क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान आएंगे, यानी भगवान को फुकार रहे हैं, तो फुकार हमारी फुकार सुनकर भी भगवान पुकार रहे हैं, तो पुकार सुनकर भगवान आते हैं और हमें दिव्य गुणधारी देवता बनाते हैं। तो आज भी बाबा ने बताया ना आज के साकार वाणी में कि क्या बताए कि सबसे पहले भक्ति, भक्ति का बाबा ने बताया है कि आपने सबसे भक्ति में क्या किया, परमात्मा को याद किया, बाद में किसको याद किया, देवी देवताओं को याद किया, और बाद में 5 तत्व को याद किया। तो हम भी पहले भगवान को याद करते, परमात्मा को, ये हो गया तीसरी बात। चौथी है कि कभी पश्चाताप होते हैं हमें, पश्चाताप के कारण भी आंसू आते। और इतिहास में ऐसे कई प्रसंग देखे हैं हमने कि कई राजा ही है जो डिसीजन ठीक लेते नहीं, उसके कारण उनको क्या होते हैं, युद्ध में हार हो जाती है उसकी, और वो हार उसको सहन करनी पड़ती है, बाद में उसको पश्चाताप होता है कि हमने वो ठीक से डिसीजन नहीं ली कि इसके कारण इतना हमारा नुकसान हो गया। कभी कभी उसके पारिवारिक भी जो डिसीजन लेते हैं तो उसमें कभी कभी ठीक ठाक नहीं होती, तो परिवार में बहुत नुकसान हो जाता है, और बाद में उसको पश्चाताप होता है कि ऐसा डिसीजन मैंने नहीं लेता तो ये नुकसान नहीं होता। तो इस पर एक कहानी मुझे याद आ रही है कि जैसा है एक सैनिक सम्राट था और उसकी रानी थी, उसका नाम चेलनाथ थी। वो रानी उसके पर बहुत प्रेम करती थी। सम्राट सैनिक ऐसा कुछ नाम है उसका। तो और वो पतिव्रता रहती, एकदम उसको विश्वास रहता है कि रानी मेरे श्रीमद अनुसार ही चलती है, मेरे सिवा दूसरे पुरुष को वो कभी स्वप्न में भी वो उसका नाम नहीं लेती। तो एक दिन क्या होता है, ऐसे महल में वो सोई रहती है, उनके साइड में वो बैठा रहता है। तो जब वो सपने में ऐसी उसके मुख से आवाज निकलता है कि इस समय वो क्या करते होंगे, तो इसको एकदम संशय आता, मैं तो इसके साइड में बैठा हुआ और ये किसको याद कर रही है। तो उसकी बुद्धि में एकदम संशय आ जाता है उसके प्रति, और संशय आने के बाद उसे एकदम संकल्प चलते है कि ये किसी दूसरे पुरुष को भी याद करती होंगी। और वही संकल्प के कारण वो सारे दिन भर उसको एकदम बेचैनी सा हो जाता है, उसको वही संकल्प चलते रहते। लास्ट में उसको ऐसा निर्णय वो लेता है कि वो रानी के प्रति एकदम उसको नफरत हो जाती है, और वो राज्य के प्रति भी उसको वहरा गा जाता है। फिर वो राज्य छोड़ करके जाने लगता है। बाद में उसका एक मंत्री रहता है, तो वो मंत्री को बोलता है कि मैं जाने के बाद क्या करना, ये महल को जला देना और मैं भगवान महावीर के संग में जा रहा हूँ, वहां पर मैं वंदना करूंगा। यानी वैराग आ गया मेरे को राज्य नहीं चाहिए। फिर वो मंत्री को एकदम ये होता है, इसको क्या हो गया अचानक, ये तो रानी पर, क्योंकि महल में तो रानी है और ये बोल रहे कि वो महल को आग लगा दो, और रानी पर तो ये बहुत प्यार करते एक दूसरे के ऊपर, ऐसा क्यों हो गया। तो वो भी आग लगाए कैसा, तो वो भी थोड़ा सोचता है, मगर उसने उसको आदेश दिया जाता है कि मैं जाते बराबर आग लगा देना। यदि उसने वो आदेश का उल्लंघन किया तो फिर उसको भी मृत्युदंड हो सकता है। तो वो घबरा जाता है, क्या करे क्या नहीं, सोचता रहता है। बाद में राजा का वो सत्संग में चला जाता है महावीर के, वहां पर वो उसका प्रवचन चालू रहता है। तो उस प्रवचन में एक ऐसा प्रसंग आता है कि पतिव्रता के ऊपर वो बोलता है कि इस संसार में कौन सी जो स्त्रियां हुई वो पतिव्रता है। तो उसमें से इसका नाम आ जाता है कि वो लास्ट में बोलता है कि चेलना रानी है, ये भी एक बहुत पतिव्रता है। तो वो शब्द सुनते ही एकदम इसको विश्वास नहीं होता कि ये महावीर ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो बाद में जब प्रवचन समाप्त हो जाता है तो वो उनके पास जाता है और वो बोलते आपने ऐसा कैसा बोलते हैं, वो तो पतिव्रता है ही नहीं और आप बोल रहे पतिव्रता है करके। तो वो बोलते क्यों, क्योंकि हम माल में दोनों ही बैठे थे बोलते, तो महल में वो सोई थी बोलते, एकदम उसके मुख से शब्द निकला, बोलता कि इस समय वो क्या कर रहे होंगे, तो वो किसी दूसरे पर पुरुष की याद करते होंगे बोले। तो उस समय उसने बोला कि वो जब उसका विश्लेषण किया वो महावीर ने, कि जब वो सोई थी बोले उस समय बहुत ठंडी थी बोले बार, और वो कंबल के बार उसका हाथ था बोले। तो कल वो इधर आई थी बोले सत्संग में, उसने सत्संग में हमारा वो सुना बोले प्रवचन, और बाद में जब महल की तरफ जा रही थी बोले उस समय एक मुनि को देखा बोले, यानी जैन मुनि, वो निर्वस्त्र था बोले और एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था बोले। तो उसने उसको वंदना की और वो चली गई बोले। और जब वो सोई थी बोले, क्योंकि उस समय तो बहुत ठंडी का समय था बोले, और उसका एक हाथ कंबल के बाहर था, तो वो ठंडी के कारण इसका ठिठुर गया था बोले हाथ उसका कि उसको उस समय उस ऋषि की ये याद आई कि मैं तो थोड़ा मेरा हाथ कंबल के बाहर इतना ठिठुर गया है, और वो मुनि है इतने ठंडी में निर्वस्त्र कैसा तपस्या करता होगा, इसलिए शब्द उसने बोला बोलते। बाद में उसका होश उड़ जाता है और वो बोलता है कि मेरे हाथ से ये बहुत गलती हो गई, और एकदम उसको पश्चाताप होता है, मगर उसको कुछ भी कर सकता नहीं क्योंकि उसने तो अपने मंत्री को आदेश दिया होता है। तो इस प्रकार पश्चाताप, कभी ऐसी कोई घटना घट जाती है और उसका पश्चाताप करना पड़ता है, तो वैसे पश्चाताप की आंसू आती है। इस पर बाबा ने आज साकार वाणी में बताया है कि आत्मा भी जब गर्भ में रहती है तब पश्चाताप करती है, और मैं ऐसा नहीं करूंगा ऐसे वो कहती है, मगर गर्भ के बाहर आती है फिर आत्मा वही कर्म करती है विकर्म। तो बाबा बोलते भूल और अभूल का एक खेल है, इस प्रकार भी भूल जाते हैं। तो और लास्ट पांचवा हमने उपाय निकाला है कि याद, जैसे भगवान के याद में हमें बहुत आंसू आते हैं कभी कभी, तो अपना टॉपिक ही वही है कि प्रेम के आंसू। तो ये याद भी है, तो याद क्या तीन प्रकार के लोग करते हैं। एक इंसान भी, इंसान की याद में उसकी आंखों में आंसू आते हैं। एक माँ है अपने बेटे को याद में कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। एक देश भारत में एक माता है और उसका बच्चा विदेश में रहता है और बहुत साल के बाद वो आता ही नहीं समझो, तो उसके याद में क्या करते हैं, वो आंसू आते। कभी अपनी माता यहाँ पर सेवा में आती है, हमने एक माता को देखा कि वो भी एक दिन ऐसे रो रहे थे। मैंने बोला आप माता क्यों रो रही, तो वो बोले मुझे मेरे पोते की याद आ गई इसलिए मेरे को रोना आ गया। बोले फिर जाओ घर, नहीं बोले मैं अकेले जा भी नहीं सकती, बोले क्योंकि हम बाकी लोगों के साथ आए। बोले मैं तो ये 2 मास के बाद जाएंगे, बोले तो मेरे को 2 मास तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। बोले तो इस प्रकार इंसान द्वारे इंसान को याद आती है, उसको उसमें आंसू आ जाते। दूसरे भक्ति मार्ग में जैसे एक भक्त है भगवान के याद में आंसू बहता है, जैसे बहुत सारे भक्त मालाएं में ऐसे कई भक्तों की ये मिसाल है कि वो इतने भगवान के प्यार में भाव विभोर हो जाते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आते। जैसे महाराष्ट्र में संत तुकाराम थे, वो इतने भगवान को याद करते थे कि वहाँ पर एक उसके गांव के पास एक पर्वत था, वहाँ पर एक मंदिर था विट्ठल का, उस विट्ठल के मंदिर में वो हर दिन जाते थे और वो भजन गाते थे और भजन में इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उसके याद से उसकी आंखों में ऐसे आंसू टपकते थे। दूसरा मिसाल मीरा संत मीरा बाई का है, वो कृष्ण के भजन गाते गाते इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते, ऐसे अनेक मिसाल है। और तीसरी बात है भगवान के याद में आंसू, तो हम भगवान के बच्चे हैं, हमें ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको अभी तक भगवान के लिए आंसू नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा पहले जीवन कैसा था, क्योंकि हमारे संस्कार कैसे थे, हमारी चाल चलन कैसी थी, हमारा रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, और जब भगवान के बन गए तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो गया। तो जब हम ये तुलना करते कि पहले का जीवन और अभी का जीवन, तो भगवान कितनी हमारी पालना कर रहे, तो ये देखते क्या होते, हमारे आंसू यानी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो यज्ञ के स्टार्टिंग में जब माता जी आई थी यज्ञ में, तो बाबा ने इतनी उसको पालना दी थी, कभी कभी उसके घर में उसको बंधन आता था कि संग सत्संग में जाने के लिए मना करते थे, तो माता क्या करती थी, रोती थी घर में ही और जो आंसू आते थे वो डिब्बी में भर देते थे और वो बाबा के पास भेज देते थे, तो बाबा क्या करते थे आंखों में रखते थे, तो वो आंसू क्या मोती बन जाते थे। तो वैसे हम भी यदि परमात्मा के प्यार में रोएंगे आंसू आएंगे तो हमारे आंसू क्या बन जाएंगे, मोती बन जाएंगे। और हम भी यानी दिल की याद बाबा से करते रहेंगे तो हम ऐसे निरंतर याद करते रहेंगे तो हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे और आने वाले सत्युग में हमें ऊंचे पद की प्राप्ति होंगी। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। टॉपिक है रूहानी प्यार। तो हम सबको जानते हैं प्यार माना क्या है। प्यार व्यक्ति से हो सकता है, बाइबल से हो सकता है, चीज़ों से हो सकता है, प्रकृति से या सिचुएशन से या कहीं स्थानों से भी प्यार हो सकता है। जहाँ भी प्यार है वहाँ हम पसंद करते हैं। जब हम पसंद करते हैं वो प्यार खुद ही करना शुरू कर देते हैं। प्यार करना शुरू करना माना हम समझते हैं वो क्या है और हम मानते हैं और सम्मान देने शुरू करते हैं। ये 3 चीज जरूर होगा। तो हम समझते हैं वो क्या है, कोई भी है, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कैसे भी हो। अगर पसंद है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और सम्मान देते हैं, माना हम संभालते हैं रिलेशनशिप में या चीज़ माना बहुत संभाल के रखते हैं या बार बार वहाँ जाते हैं स्थानों पर या कुछ सिचुएशंस पर इंतज़ार करते रहते हैं हम। रूहानी प्यार माना रूह का प्यार या रूहों से प्यार जो शिव बाबा हमको सिखा दिया है। माना रूह को समझना है वो क्या है, पहचानना है और मानना है कि हम रूह है, जो भी है वो रूहों ही है, और सम्मान देना है, स्वमान में रहना है, ये है रूहानी प्यार। अगर हम समझना, पहचान, माना कि वो सत्य ज्ञान क्या है उसके पीछे, रूह माना क्या है, आत्मा, आत्मा का सत्य पहचान है वो सात गुण का भंडार है, आत्मा में सात गुण है वो हम समझना है, वो हर एक गुण क्या क्या है ऐसा। और बाबा ने जो कुछ बोला, हम अभी तमोप्रधान से सतोप्रधान बन रहे हैं तो वो भी हम समझना है, वो सत्य है, और मानना भी है कि हाँ मैं सुधार रही हूँ या सुधारते रहती हूँ ऐसा। क्योंकि सत्य बाप ने ये बोला है कि आप आत्माएं देवता थे तो अभी हम फिर से बन रहे हैं, तो ये सत्य को हम मानना ही है। और मान देना माना स्वमान में रहना है और दूसरों को भी उस स्वमान पे देखना है, वही है मान देना। तो ये है रूहानी प्यार। और रूहानी प्यार पहला खुद पर करना है, आत्मा समझना है और मानना है कि हाँ सोल कॉन्शियस में रहना है या और स्वमान में रहना है। जैसे मैं ईश्वर संतान हूँ वैसे ही सभी आत्मा ईश्वर के संतान ही है, ऐसा समझ के उनको मान देकर हम जाना है। और रूह के ज्ञान के अनुसार बाबा बोला है कि हम ड्रामा पर एक्टिंग कर रहे हैं तो वो भी हम समझना है, तो हम आत्माएं एक्टर्स के एक्टिंग कर रहे हैं तो ड्रामा पर भी प्यार होना चाहिए। माना हर चीज जो भी हम देखते हैं वो हम पसंद करना ही है, ऐसा नहीं कुछ परिस्थिति घटना आए तो ये पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हम समझते हैं तो रूहानी प्यार नहीं है। और ये जो पांच तत्व का शरीर मिला है ड्रामा अनुसार उसको भी हम पसंद करना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म में ये जो शरीर मिला हुआ है ये सेवा अर्थ ही मिला हुआ है, सही मिला हुआ है। जो भी हूँ जैसा भी हूँ, जब बाप खुद भगवान हमको एक्सेप्ट कर लिया, जैसे भी है हम वैसे ही वो मान लेते थे ले गया, तो वैसे ही हम भी मानना है। और जो भी शरीर अर्थ जो भी मिला हुआ है, वैभव या वस्तु जो भी है वो उसको भी हम मानना है, वो भी सही मिला है, खाना हो या मोबाइल या कुछ भी चीज़ के स्थान, कहीं स्थान जो भी है, हाँ परिवार जिनके साथ हम रहते हैं, हाँ डिपार्टमेंट, हाँ सेवा, जो भी हमारे साथ है जो भी मिला है वो सही मिला है, तो उसको भी हम पसंद करना है। माना कभी नहीं हम कंप्लेन करना है, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं, ऐसा हम कभी नहीं कंप्लेन करना है, वही है रूहानी प्यार। अगर रूहानी प्यार है तो वो निशानियां कुछ हम निकले हैं, मैं वो बात करती हूँ। रूहानी प्यार है तो वो आसानी से बातचीत करते हैं, माना सहज से प्यार करते हैं व्यक्ति से, वो सोच सोच के नहीं करते हैं ये कैसे मानेंगे, अगर मैं बोल सकता हूँ या सकती हूँ, ये सोच सोच के हाँ वो बात करने हैं, ऐसे ही हो जाता है। बाप दादा मिलन में जो भी आते हैं, कहीं कहीं से आते हैं, तो जब भी हमसे मिलते हैं तो सीधा परिवार का वो फीलिंग आ रहा है, वो है रूहानी प्यार। बातचीत सरल से सहज विधि से होता है। और रूहानी प्यार माना समानता होगी, इक्वालिटी, ये बड़े हैं हम छोटे हैं, ये पढ़ने वाले हैं हम अनपढ़ हैं, ऐसा मतभेद नहीं रहेगा, तो समानता रहेगी। तो जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ही औरों को भी हम देखते हैं समानता से, वो जो भी सेवा करे हुए हैं, जो भी सेवा करते हैं, फिर भी अगर हम आईटी ऑफिस में बैठे हैं, ये साफ करने वाला है, ये सब डिफरेंशिएशन ही नहीं रहेगा। तो वो है रूहानी प्यार, और रूहानी प्यार में आकर्षण होगा। कौन सा आकर्षण? वो जो सत्यता है, जो हम देखते हैं, जो भी सीन्स हम देखते हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु, जो भी हम देखते हैं, उसके पीछे वो सत्यता क्या है, उस पर आकर्षण होता है। जैसे आत्मा का विशेषताओं पर या गुणों पर आकर्षण होगा, या ड्रामा के सीन पे, हर सीन कल्याणकारी है, तो वैसे उस पर आकर्षित होगा। रूहानी प्यार है तो आराम मिलेगा। मनम कोई कंफर्टेबल, दे फील कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि अगर उनके साथ एडजस्ट करके हम जाना है तो तब कंफर्टेबल है। एग्जीबिशन में जब हम एक्सप्लेन करते हैं, अगर जो एजुकेटेड आते हैं उनसे हम एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, वो समझ लेते हैं। जो अनपढ़ है जब आते हैं, तब जब कुछ भी हम बोलते हैं वो मानते नहीं, या समझ में नहीं आएगा, कोई भी एक्सप्रेशन दिखाएंगे नहीं, तो हम समझते हैं ये इनसे हम क्या, कैसे हम एक्सप्लेन करना है। हाँ, ऐसा कंफर्टेबिलिटी नहीं रहे। अगर कंफर्टेबिलिटी है तो वो रूहानी प्यार है। कोई भी अपेक्षा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा कि ये समझना है, जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ वैसे ही वो समझना है, ऐसा एक्सपेक्टेशन कोई नहीं रहेगा। और रूहानी प्यार है तो विकास होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम आत्माएं हैं, ज्ञान भी मिला है। अगर कोई हमको करेक्शन दे दे तो भी हम क्या करते हैं, फॉल्ट है, वो फाइन फॉल्टिंग करते हैं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हमारा उन्नति के लिए वो बोलते हैं, ऐसा हम समझकर हम बदलने के लिए शुरू कर देते हैं। वही है रूहानी प्यार। जब हम वो करते हैं, खुद भी विकास होगा और परिवार को भी विकास हो जाएगा। तो रूहानी प्यार माना विकास होना है। रूहानी प्यार है तो भावना से सत्यता को अलग कर देता है। हम सिर्फ भावना को नहीं देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो फैक्ट है वही दिखाई देगा। हम एम्पथी करेंगे, माना हम वो जो फैक्ट है, सिचुएशन है, वो हम समझ लेते हैं, लेकिन उसका फीलिंग में नहीं, कभी नहीं जाएंगे। अगर हम भी फीलिंग में आ जाएंगे तो जो भी है वो हम संभाल नहीं कर पाते हैं। कोई रो रहे हैं, अगर मैं भी रोने लगी है तो उनका वो जो सत्यता है, सुख स्वरूप, वो सुख स्वरूप को मैं दिला नहीं सकूंगी। तो रूहानी प्यार में है तो भावनाओं से सत्यता को अलग कर देते हैं। वही है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार है तो वे जुड़े रहेंगे, माना दे ऑल आर कनेक्टेड, संस्कार मिलन हो जाएगा। दे गो विथ ऑल, माना एक दो से समझकर ऐसा चलेंगे वो, ऐसा, क्योंकि हम सब एक परमपिता परमात्मा का ही बच्चे हैं, तो वैसे ही हम कनेक्टेड है, हम सब भाई भाई है, तो वैसे ही कनेक्टेड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं, हम बीके परिवार ही बेस्ट एग्जाम्पल। कहीं भी ऐसा नहीं, कहीं कहीं से आते हैं इमीडिएटली हम जुड़ जाते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं रहेगा, सिर्फ बीके परिवार में ही है ये। रूहानी प्यार है तो वे एक दूसरों के साथ ईमानदार रहेंगे, क्योंकि कुछ छिपाने के ही नहीं, जो हम सत्य देखते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम करते हैं, तो कुछ छिपाने के भी बात ही नहीं, तो सदैव हॉनेस्टी रहते हैं। आज भी बाबा ने बोला, सच्चा बाप के साथ सच्चा रहना है, वो जो धारण हो जाएगी रूहानी प्यार है तो। अगर रूहानी प्यार है तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि माया की अटैक ही नहीं, जो हम है अनादि स्वरूप में, जो ओरिजिनल है उस पर हम टिके रहेंगे तो माया की अटक ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक सुरक्षित हम रहेंगे। रूहानी प्यार है तो डिटैच्ड रहते हैं। लोगों के प्यार में अटैचमेंट बहुत होता है, मोह होता है बहुत, इनसे बहुत दुखी मिलता है। लेकिन यहाँ जो रूहानी प्यार है वो फ्रीडम देता है, जो कुछ करना कर लो, क्योंकि सम्मान देते हैं, मान लेते हैं, जो भी है जैसा भी है हम मान लेते हैं, इसलिए वो हम लिबरेशन दे देते हैं, तो डिटैच्ड रहते हैं, वो सुख देते देता है। रूहानी प्यार है तो डिटैचमेंट नो अटैचमेंट। अच्छा, रूहानी प्यार है तो मतभेद में नहीं आएगा। जैसे हम पीछे हम देखा कि ये बड़े हैं या पढ़े हैं अनपढ़, ये मतभेद कुछ भी नहीं रहेगा। और बाबा साकार मुरली में ये भी कहा है कि आत्मा माना आत्मा ही है, बाई बाई से भी ऊपर होना चाहिए, ऐसा अवस्था होनी चाहिए। अभी बाई बाई दृष्टि भी न हो, सिर्फ आत्मा, बस वही होना चाहिए। ओम शांति।
कर दे।